ओम शांति, ओम शांति। श्री श्री शिव बाबा आए हैं हम बच्चों को श्री बनाने। और कैसे बनाते हैं श्री? श्री मत देकर। तो श्री मत से हम श्री बन जाते हैं, श्री श्री द्वारा। ये भी एक पहेली है। तो बाबा कहते हैं श्री है देवताएं और श्री श्री है देवताओं को रचने वाला। तो शिव बाबा है श्री श्री, जो श्री देवताएं रचते हैं श्री मत से। तो कौन बनते हैं देवता? हम बच्चे। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे देवता बन रहे हो, तो तुम्हारे अंदर वो दैवी लक्षण अभी से ही चाहिए। ऐसे नहीं सतयुग में जाकर के वो लक्षण लाएंगे। तो लक्ष्य इतना ऊंचा है तो लक्षण भी हमारे में ऊंचे होने चाहिए। और कैसे आएंगे ये ऊंचे लक्षण? श्रीमत पर चलकर। तो श्रीमत क्या कहती है? बच्चे मुझे याद करो, ये तो सबसे बड़ी श्रीमत है। लेकिन श्रीमत की भी बहुत लंबी लिस्ट है और उस श्रीमत पर चलकर ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। तो आज बाबा ने बहुत सारी बातें कही है, पूरी धारणा की मुरली है। कैसे तुम बच्चों को देवता बनना है तो क्या क्या करना है? तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 4/10/2025 है। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुमको श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नर्कवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। ऐसी श्रीमत देते हैं जो हम नर्कवासी से स्वर्गवासी बन जाते हैं। प्रश्न है, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? बहुत जरूरी है ये बातों को ध्यान पर रखना, तभी देवता बनेंगे। अगर वो नहीं है लक्षण तो देवता क्या बनेंगे? तो देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? उत्तर, कभी कोई बात में रूठना नहीं। अभी किसी ने कुछ कह दिया, हाँ कई बार होता ना, एकदम छुई मई बन जाते हैं, इतने नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, बात करना छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या क्या। हाँ, सामने आते ही घूर के देखेंगे गुस्सा है क्या है। तो बाबा कहते हैं कभी कोई बात में रूठना नहीं। रूठने वालों की भेंट बाबा किससे करते हैं? जो रूठ जाते हैं ना छोटी छोटी बातों में, उनकी उनकी शक्ल कैसे हो जाती है? बाबा कहते हैं मुर्दे जैसे, क्योंकि मुर्दे में कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, आत्मा तो नहीं है ना, तो मुर्दे जैसी शक्ल हो जाती है। क्योंकि आत्मा उस समय जैसे दबी हुई है, उसका श्रेष्ठ संस्कार इमर्ज नहीं है। तो बाबा कहते हैं कभी कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले, श्रेष्ठ शब्द निकले, कोई अपशब्द नहीं निकले। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। अगर कांटे वह पत्थर निकलते हैं तो क्या हो जाएंगे? बाबा कहते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। अगर पत्थर निकलते हैं, दुख देने वाले शब्द निकलते हैं, तो खुद भी जैसे पत्थर ठहरे। तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं और यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सत्युग में नहीं जाके बनेंगे, यहाँ ही बनना है सर्वगुण संपन्न। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा, सावधान भी बाबा करते हैं। ओम शांति। नए विश्व और नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। अब ये तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, हम लायक नहीं थे। कहते भी है ना भक्ति में, क्या कहते हैं? हे प्रभु, मैं लायक नहीं हूं, मुझे लायक बनाओ। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, तो मनुष्य तो हो ही, ये देवताएं भी तो मनुष्य ही है, परंतु इनमें दैवी गुण है। इनों को ही कहेंगे, बाबा कहते हैं जिनमें दैवी गुण है देवताएं, इनको ही कहेंगे सच्चा सच्चा मनुष्य। अगर दैवी गुण नहीं है तो ये तो जैसे असुर हो गए, है ना, राक्षस हो गए, या जानवर, जैसे कोई जानवर भी कितना लड़ते हैं आपस में। तो बाबा कहते हैं तो मनुष्य तो ये भी है, तुम भी हो, पर ये देवताएं भी मनुष्य है, परंतु इनमें दैवी गुण है। इनों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्यों में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवरों मिसल हो जाती है, दैवी गुण नहीं है तो उसको आसुरी गुण कहा जाता है। अब फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं, सच खंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य ये लक्ष्मी नारायण है। तो सच खंड में रहने के लायक बनाते हैं, तो सबसे लायक कौन है? लक्ष्मी नारायण, जो सच खंड के सच्चे मनुष्य है। इनों को फिर देवता कहा जाता है। इनों में दैवी गुण है, भल गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु पावन राजाएं कैसे होते हैं, फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं, ये राज कोई नहीं जानते। वो है भक्ति मार्ग। ज्ञान को तो और कोई जानता ही नहीं है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं, देवता बनाते हैं, समझा करके श्रीमत देकर ऐसा बनाते हैं। कर्म तो ये देवताएं भी सतयुग में करते हैं। जो आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर आई, कर्म क्षेत्र पर आई, वो तो कर्म करना तो शुरू कर देती है। तो कर्म तो बाबा कहते हैं ये देवताएं भी सतयुग में करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते हैं। ये उनमें दैवी गुण है। छीछी काम न करने वाले ही स्वर्गवासी बनते हैं। कौन बनते हैं स्वर्गवासी? जो छीछी काम कभी नहीं करते वही स्वर्गवासी बनते हैं। नर्कवासी से माया छीछी काम कराती है। हाँ बाबा बहुत प्यार से कह रहे छीछी, हाँ बच्चों को कहते ना छीछी। तो नर्कवासी से माया छीछी काम कराती है। अब भगवान बैठ श्रेष्ठ कर्म कराते हैं, और कैसे श्रेष्ठ कर्म कराते हैं? श्रेष्ठ मत देते हैं कि ऐसे छीछी काम नहीं करो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं। देवताएं श्रेष्ठ है ना, रहते भी है नई दुनिया श्रेष्ठ स्वर्ग में। ये भी तुम्हारे में नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, इसलिए हाँ सब नंबर वार है, इसीलिए बाबा कहते हैं माला भी बनती है 8 की व 108 की। इतने करोड़ों मनुष्य और उसमें केवल 8 फुल पास, हाँ फुल पास, पास विद ऑनर, तो 8 की व 108 की, चलो करके 16,108 भी कहें, जो रॉयल फैमिली होगी वो 16,108 वो भी है कहीं, पर वो भी क्या हुआ, इतने करोड़ों मनुष्य है इनमें से 16,000 निकले तो क्या हुआ, 800 करोड़ इस समय दुनिया की जनसंख्या, और उसमें से केवल 16,000 निकले तो क्या हुआ, क्वार्टर परसेंट भी नहीं है, क्वार्टर परसेंट क्या 0.00 पता नहीं कितना होगा, क्वार्टर परसेंट भी नहीं है। तो बाप बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं, रोज बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी विकर्म नहीं करो, तुमको ऐसा बाप मिला है हाँ, तो बाबा कहते हैं बहुत खुशी होनी चाहिए उनकी श्रीमत पर चलो, पर उसके लिए भी हाँ पहले तो खुशी हो कि ऐसा बाप हमको मिला है जो इतनी श्रेष्ठ श्रीमत दे रहा है, तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो कि हमको बेहद के बाप ने एडॉप्ट किया है, हम उनके बने हैं, बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़े, बनना पड़े, लायक बनना पड़े, तभी तो स्वर्ग में उच्च पद पाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे ना, इनों की लायकी की महिमा की जाती है, ये इतने लायक थे इसीलिए इनकी क्या है लायकी की महिमा, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, ये इनकी लायकी की महिमा है। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे ना, इनों के लायकी की महिमा की जाती है, ये कितने लायक थे, फिर 84 जन्मों के बाद न लायक बन जाते हैं, हाँ ना लायक हो तो ये गाली हो जाती है, तो ये सॉफ्ट शब्द है न लायक, न लायक बन जाते हैं, एक जन्म भी नीचे उतरे तो जरा कला कम हुई, हाँ एकदम नई ब्रांड न्यू गाड़ी लो और एक दिन चलाओ केवल एक दिन, तो अगले दिन थोड़ा फर्क तो पड़ ही जाएगा ना, केवल एक दिन ही चलाई तो भी, एक जन्म भी नीचे उतरे तो जरा कला कम हुई, ऐसे धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है, जैसे हाँ बाबा क्या मिसाल देते, जैसे ड्रामा भी जूं मिसल चलता है ना, इतना बेहद का ड्रामा 5,000 साल का एक रील है और कैसे चलता है जूं मिसल, जैसे बालों में जूं चलती है धीरे धीरे, जैसे ड्रामा भी जूं मिसल चलता है ना, तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो, तो धीरे धीरे नीचे उतरते हो तो 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है, धीरे धीरे उतरते हो तो समय ज्यादा चाहिए ना, धीरे धीरे उतरते हैं तो केवल 2 कला कम होती है, फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती है, हम कई बार कहते हैं सत्युग से नीचे उतरे, सत्युग त्रेता में तो धीरे धीरे जैसे सीढ़ी उतरते ना, धीरे धीरे सीढ़ी उतरते, परंतु द्वापर में जैसे ही आए तो सीढ़ी नहीं उतरे लेकिन सीढ़ी से गिरे, अब कोई गिरेगा तो कितना जल्दी जल्दी गिरेगा और उतरेगा तो टाइम लगता है ना, तो बाबा कहते हैं तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो तो 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है, फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती है, क्यों क्यों जल्दी जल्दी कला कम हो जाती है, क्योंकि ग्रहण लग जाता है, अब ग्रहण जब लगता है तो कितना जल्दी उसकी चांद की रोशनी कम हो जाती है, सूर्य की रोशनी कम हो जाती है। तो ग्रहण लग जाता है, जैसे सूर्य चांद को भी ग्रहण लगता है ना, ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता है, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है इस समय, सारी दुनिया को जैसे ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं याद से ही ग्रहण उतरेगा, इसीलिए क्या करते जब ग्रहण लगा रहता है ना, तो उस समय कुछ किसी को भी छूते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, शांत रहते हैं। तो बाबा कहते हैं याद से ही ग्रहण उतरेगा, कोई भी पाप नहीं करो। पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना, ये कड़ा पाप है। देह अभिमान में आना बाबा कहते हैं ये कड़ा पाप है। बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है, फिर सारे कल्प में ऐसी शिक्षा जो बाबा देते हो तो कभी नहीं मिलेगी। कोई नहीं कहेगा देह अभिमान तो पाप है, सबसे बड़ा पाप, ये अभी भगवान ही कहते हैं। तो इस एक जन्म के लिए शिक्षा मिलती है, क्यों केवल इस एक जन्म के में ही शिक्षा मिलती है, क्यों? क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है, दुनिया बदल रही है, इसीलिए ये शिक्षा भी अभी मिलती है। फिर ऐसी शिक्षा कभी नहीं मिलती है, बैरिस्टर आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हो, स्कूल आदि तो सदा है ही है, सतयुग में भी स्कूल होते ना, तो वहां भी तो पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग में भी तो पढ़ते हैं, स्कूल आदि तो सदा है ही है, ये ज्ञान एक ही बार मिला है बस, फिर नहीं मिलेगा सारा कल, ऐसा टीचर भी नहीं मिलेगा, ऐसी शिक्षा भी नहीं मिलेगी। ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं, वो अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज देते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं, तुम आत्माएं पाठधारी हो। अब बाबा क्या समझाते हैं सहज, तुम आत्माएं पाठधारी हो, आत्माएं अपने घर से आकर यहाँ पाठ बजाती है, उनको मुक्ति धाम कहा जाता है। हमारा घर कहाँ है, उसको मुक्ति धाम कहा जाता है, उस घर से आती है पाठ बजाने, उसको मुक्ति धाम कहा जाता है। स्वर्ग है जीवन मुक्ति धाम, वहां तो है, और यहाँ स्वर्ग है जीवन मुक्ति धाम, और यहाँ है जीवन बंध, बंधन है जीवन, बंधन है जैसे जीवन बंध। ये अक्षर भी यथार्थ रीति याद करने हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति जीवन बंध, बाबा कहते अच्छी तरह ये अक्षर याद करने हैं। मोक्ष तो कभी होता ही नहीं है, मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल जाए, तो मोक्ष किसको समझते हैं, किसको कहते हैं, अर्थात आवागमन से ही निकल जाए, फिर आए ही नहीं हम वापस इस दुनिया में, आने जाने का ये चक्र बाबा कहते हैं वो कहते हैं इससे निकल जाए, आवागमन से निकल जाए, उसको मोक्ष कहते हैं। परंतु पाठ से तो निकल ही नहीं सकते हम, क्या हुआ इसका मतलब कि मोक्ष तो कभी मिलता ही नहीं है। तो पाठ से तो निकल ही नहीं सकते हैं, ये अनादि बना बनाया खेल है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हू बहु रिपीट होती है। सतयुग में वही देवता आएंगे, जो कलप पहले देवता आए थे वही देवता आएंगे, फिर पीछे इस्लामी बोधी आदि सब आएंगे, यह ह्यूमन झाड़ बन जाएगा, ह्यूमन झाड़ मनुष्यों का झाड़ है ना, कल्प वृक्ष में दिखा है ना, पत्तों के बीच में मनुष्य का चेहरा दिखाया है, तो ये ह्यूमन झाड़ है, ये ह्यूमन झाड़ बन जाएगा। इनका बीज ऊपर में है, बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, मनुष्य सृष्टि तो है ही है परंतु सतयुग में बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि होती जाती है। अच्छा, अब वृद्धि तो हो गई, सतयुग में वो छोटी थी, फिर वृद्धि होते होते अभी तो बहुत वृद्धि हो गई, तो फिर बाबा पूछते हैं, फिर छोटी कैसे होगी? अब अति हो गई है वृद्धि, इतनी हो गई है जो कहते बस करो बस करो, हाँ बस करो, परंतु बाबा कहते फिर छोटी होगी, तो छोटी कैसे होगी? बाप आकर पति से पावन बनाते हैं, कितने थोड़े पावन बनते हैं, कोटों में कोई निकलते हैं। आधा कल्प बहुत थोड़े होते हैं, आधा कल्प में कितनी वृद्धि होती है। तो सबसे जास्ती संप्रदाय तो उन देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि 5000 पहले साल पहले से आए हैं, वो तो 2500 साल पहले से आए दूसरे धर्म वाले। तो बाबा कहते हैं सबसे जास्ती तो आधा कल्प में कितनी वृद्धि हुई है, तो पहले पहले तो सबसे जास्ती संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि पहले पहले तो वो आते हैं, परंतु और धर्मों में चले जाते हैं, क्योंकि बाप को ही भूल गए। ये है एकज भूल का खेल, बाप को भूल गए तो फिर अपने धर्म के प्रति वो सम्मान जो चाहिए वो है नहीं, फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एकज भूल है, क्योंकि भगवान को ही भूल गए हैं, खुद को ही भूल गए हैं। तो ये है एकज भूल का खेल, भूलने से फिर क्या हो जाते हैं? भूल तो की, भगवान को भूल गए, खुद को भूल गए, फिर इस भूलने से क्या होता है? कंगाल बन जाते हैं, और याद आ गया तो फिर सिरताज बन जाते हैं। तो भूलने से कंगाल हो जाते हैं। हाँ, सत्यनारायण की कथा में भी ऐसे ही दिखाते हैं, वो एकदम कंगाल हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्यनारायण की कथा की नहीं, तो जो धन लेकर भी आए विदेश से परदेश से, तो वो भी कखपन हो गया, क्योंकि उन्होंने सत कथा नहीं की। फिर याद आया कि अरे हमने कथा तो की नहीं, फिर कथा की, फिर मालामाल हो गए। तो बाबा कहते यही तो कहानी है सत्यनारायण की। तो बाबा कहते हैं भूलने से कंगाल हो जाते हैं, भूलते भूलते एकदम भूल जाते हैं। भक्ति भी पहले एक की करते हैं, क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला एक है, फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए? चलो भक्ति मार्ग में भूल भी गए, पर शिव की तो भक्ति की ना, तो चलो केवल शिव की भक्ति होती ना, फिर देवताओं की भक्ति, फिर प्रकृति की भक्ति, सबकी भक्ति, बाबा कहते वो फिर क्यों करते हैं? तो भक्ति भी पहले एक की करते हैं, क्योंकि सर्व का सदगति करने वाला एक है, फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए? इन लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला तो शिव बाबा ही है ना, श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण बनाने वाला कैसे होगा? ये तो हो नहीं सकता कि श्री कृष्ण उनको देवता बनाए। राजयोग सिखलाने वाला श्री कृष्ण कैसे होगा? वो तो है ही सतयुग का प्रिंस, कितनी भूल कर दी है, तो बुद्धि में बैठता ही नहीं है, क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं फिर ये ज्ञान बाबा देते हैं तो बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है, बाबा बच्चों को समझाते अभी कलयुग में तो हर एक का देखो प्रॉपर्टी का झगड़ा, प्रॉपर्टी का क्या, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, सब प्यार प्रेम से रहते थे, तो वो जॉइंट फैमिली में सबका हिस्सा होता था, और वो हिस्सा एक वो रखते थे, क्योंकि जॉइंट ही थे, कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम ऐसे अलग अलग हो जाएंगे, और अभी सब अलग अलग होना चाहते हैं। अब वो जॉइंट फैमिली का जो वो है वो अलग अलग कैसे करे? हर एक सोचेगा मुझे ज्यादा मिले, मुझे मिले, मुझे मिले, तो वो झगड़े झगड़े ही रहते हैं, सुलझते ही नहीं है, तो देखो बाबा ने कितनी कितनी बात अच्छी कही है। बाबा कहते हैं कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उनको खलास कर दो, चलो आपको कम मिली जमीन कोई बात नहीं, इसमें क्या। तो बाबा अपना मिसाल देते हैं, ब्रह्मा बाबा अपना मिसाल देते हैं, झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे, वो मर भी जाते हैं परंतु उनका झगड़ा पूरा नहीं होता है जमीन का। तो बाबा कहते झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे, तो बाप समझाते हैं इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़ी किया। आपको मालूम होगा ना कि कैसे जब बाबा को साक्षात्कार हुए तो ये हीरे तो बाबा को पत्थर दिखाई देने लगे। तो बाबा ने अब सोचा मैं वापस हैदराबाद जाऊं, तो बनारस से हैदराबाद चले गए और देखा ये तो इतना सोना हीरा मोती सब दुकान में है, तो कहा बस मुझे बिजनेस वाइंड अप करनी है। तो उनके जो भागीदार थे बाबा का हिस्सा ज्यादा था लेकिन बाबा को बहुत कम दिया, खुद सारा हिस्सा ले लिया, नहीं तो आधा आधा करना चाहिए क्योंकि मिलके किया था। तो परंतु बाबा को उन्होंने बहुत कम दिया कंपैरेटिवली, अब ज्यादा हिस्सा खुद ले लिया, दुकान पूरी खुद ले ली और बाबा को थोड़ा जो धन प्रॉफिट में था बस वही दिया। तो बाबा ने झगड़ा नहीं किया, जितना बाबा को मिला उतना ही बाबा फिर लेके गए वापस हैदराबाद और सारा दुकान पार्टनर को दे दिया। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, तो बाबा कहते हैं झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे, तो बाप समझाते इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़ी किया, कम मिला तो जाने दो, कम मिला तो जाने दो, इसमें क्या है, थोड़ी प्रॉपर्टी मिली। अभी बाबा के जब बन जाते हैं तो फिर घर में बुलाते हैं कि अभी प्रॉपर्टी बांटनी है, फिर वो झगड़ा चलता है तो काम होता ही नहीं, फिर वापस आते हैं कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, फिर जाओ तो अरे भाई तुमको थोड़ा मिल रहा है छोड़ो ना क्या करना है। लेकिन तो बाबा कहते हैं छोड़ना छोड़ देना चाहिए, इसमें छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़ी किया, कम मिला तो जाने दो, उसके बदले कितनी राजाई मिल गई ब्रह्मा बाबा को। तो वो राजाई की भेंट में वो थोड़ी जो प्रॉपर्टी थी वो कोई बड़ी बात थोड़ी थी, तो सह छोड़ दिया तो उसके बदले कितनी राजाई मिल गई। बाबा बताते हैं मुझे साक्षात्कार हुआ, ब्रह्मा बाबा मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश और राजाई का, तो कितनी खुशी हुई, हमको विश्व की बादशाही मिलती है तो ये सब क्या है, हाँ ये धन दौलत ये क्या है, हमको तो विश्व की बादशाही मिलती है, ऐसे थोड़ी कोई भूख मरेंगे। ब्रह्मा बाबा कई बार कहते हैं मैं भूख मरा क्या, ये सब छोड़ आया तो मैं कोई भूखा थोड़ी मरा, तो ऐसे थोड़ी कोई भूख मरेंगे, बिगर पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं ना, कहीं दिखाते हैं कि भाई भी भूखा है चलो मांगा थोड़ा सा उसको मिल गया तो मिल जाता है, कहीं ना कहीं से भूखे थोड़ी मरते, बिगर पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं ना। फिर बाबा किसका मिसाल देते हैं, मम्मा का, मम्मा तो कुछ भी नहीं लाई, जिस ड्रेस में मम्मा आई थी उसी ड्रेस में ही बाबा ने उसको स्वीकार किया, ऐसे नहीं कि कोई कपड़े भी लेकर के आई, धन तो छोड़ो धन तो था ही नहीं क्योंकि देवाला मारा था इनके पिता ने और वो तो हार्ट फेल से मर गया था पिताजी मम्मा के, तो वो तो अमृतसर में रहते थे तो माँ और बेटी थे बस, और एकदम कंगाल हो गए, मकान भी चला गया सब कुछ चला गया। तो मामा ने बुलाया, माना उनकी माँ के भाई ने हैदराबाद में बुलाया और बिल्कुल कंगाल रूप में अपने भाई के पास गई और एकदम कंगाल जैसी थी। तो देखो बाबा के पास आई तो कहाँ सरस्वती बनी फिर लक्ष्मी बन गई। तो देखो बाबा ने कितना सुंदर कहा, मम्मा ने कुछ लाया क्या, कितना मम्मा को याद करते, मम्मा ने जब शरीर छोड़ा इतना रोते थे, इतना रोते थे, कई मेरे लौकिक रिश्तेदार भी कई आए ज्ञान में, लेकिन जब मम्मा ने शरीर छोड़ा बहुत रोई, एक तो हमारी लौकिक में मौसी जैसी थी, इतनी इतना रोया बाबा को छोड़ दिया, हमने कहा बाबा को क्यों छोड़ रहा है, मम्मा ने तो देखो एडवांस पार्टी में चली गई। नहीं नहीं मम्मा चली गई, मम्मा चली गई, मम्मा चली गई, ऐसे रोने लगी। तो ऐसे बहुत होंगे ना, तो बस ऐसे ही। तो बाबा कहते कितना मम्मा को याद करते हैं। बाप कहते हैं याद करते हो ये तो ठीक है, चलो मम्मा से बहुत प्यार था, मम्मा को याद करते तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को तो याद नहीं करना है ना। नाम रूप को याद करके कि मम्मा चली गई और रोते रहो रोते रहो, रोते तो नहीं रहना है ना। तो हम तो अभी उसकी जगह क्या करना है, हमको भी उन जैसी धारणा करनी है, मम्मा जैसी बनी वो धारणा मुझे भी करनी है। ऐसे सोचो ना, ये तो मम्मा चली गई मम्मा चली गई। तो बाबा ये बहुत समझाते थे। और फिर तो बाबा ने कैसे युक्ति से कहा ये बड़ी माँ है, ये बड़ी माँ है, तो ये बड़ी माँ है, तो छोटी माँ का इतना ही पार्ट था। हमको भी उन जैसी धारणा करनी है, हम भी मम्मा जैसे अच्छा बनकर गद्दी लायक बने। सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़ी हो जाएंगे, होता ना 13वें दिन उस आत्मा की बहुत महिमा करते हैं ना, जो आत्मा चली गई उसकी महिमा करते हैं, सब उनका वर्णन करते हैं, परंतु वर्णन करते करते कई बार रोने लगने से तो कुछ नहीं होगा ना, उन जैसा बनना है। तो सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़ी हो जाएंगे। बाप तो कहते हैं माँ में कम याद करो, याद की यात्रा में रहना है, मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। खाली मम्मा चली गई मम्मा चली गई ऐसे तो नहीं कहना है, मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो, मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसी महिमा लायक बनकर दिखाओ। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा, और ही क्या होगा। बाबा कहते हैं सिर्फ मम्मा मम्मा कहे और रोते रहे और ही पेट पीठ से लग जाएगा, कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए बाबा के मना रोने से बाबा मना करते कि कोई को भी रोना नहीं है, और ही पेट पीठ से लग जाएगा। शिव बाबा को याद करने से ही पेट भरेगा, इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। देखो बाबा ने उसी समय कहा इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा, याद करना है एक को, बलिहारी एक की है, तो युक्तियां रचनी चाहिए सर्विस की। अब बाबा फिर सर्विस पर आते हैं, युक्तियां रचनी चाहिए सर्विस की, सदैव मुख से फूल निकले। ज्ञान भी जब सुनाते हैं तो वह प्यार से सुनाना होता है, तो सदैव मुख से फूल निकले। अगर कांटे कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, तुमको यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्ट सुनने, यहाँ ताजा ताजा नशा बाबा चढ़ाते हैं, फिर सेंटर पर नशा चढ़ता है। सेंटर पर भी जाते हैं घर से तो सेंटर पर नशा चढ़ता है, फिर घर गए संबंधी आदि देखे तो खलास। यहाँ तुम समझते हो हम बाबा के परिवार में बैठे हैं, वहाँ आसुरी परिवार होता है, कितने झगड़े आदि रहते हैं, घर घर में झगड़े झगड़े आदि रहते हैं, वहां जाने से ही किचड़ पट्टी में जाकर पड़ते हैं। यहाँ तो तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए। बाबा के घर में आए हो, तपस्या करने आए हो, रिफ्रेश होने आए हो, तो यहाँ तो बाबा नहीं भूलना चाहिए ना। तो बाबा कहते यहाँ तो तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए, दुनिया में सच्ची शांति किसको भी मिल न सके। पवित्रता सुख शांति संपत्ति सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद करते हैं, सुख शांति पवित्रता भव कह करके बस ऐसे ही दे देते हैं बाबा या मिल जाता है, नहीं। बाप कोई आशीर्वाद करते ऐसे नहीं, आयुष्वान भव, पुत्रवान भव, ऐसे नहीं आशीर्वाद करते, नहीं। आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता, चलो सिर पर हाथ रख दिया, लेकिन इससे क्या होगा? पुरुषार्थ करना है ना, पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलता है ना। तो बाबा कहते हैं आशीर्वाद से कुछ नहीं मिलता, आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता, ये मनुष्यों की भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते, किसी को मुक्ति थोड़ी दिला सकते हैं। बाबा कहते हैं सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते, चलो आज आशीर्वाद दी किसी को आयुष्वान भव, अब पहले खुद को तो दे। बाबा कहते कल वो ही मर जाए, वो गुरु ही मर जाए, आशीर्वाद दी आयुष्वान भव की और खुद ही मर गया। तो बाबा कहते हैं आज आशीर्वाद देते कल खुद ही मर जाते। पोप भी देखो कितने होकर गए हैं, वो पोप भी आशीर्वाद ही देते थे पर वो खुद भी तो शरीर छोड़ के गए। पोप भी देखो कितने होकर गई है, गुरु लोगों की फिर गद्दी चलती है। छोटेपन में भी गुरु मर जाते हैं फिर दूसरा कर लेते हैं, या छोटे चेले को गुरु बना देते हैं। अब कोई यहाँ गुरु मरा तो अभी उनको किसको गद्दी दे, तो एक छोटे बच्चे को ही गद्दी देते थे। तो गुरु लोगों की गद्दी चलती है, छोटेपन में भी गुरु मर जाते हैं फिर दूसरा कर लेते हैं, या छोटे चले छोटे चेले को ही गुरु बना देते हैं। ये तो बाप दादा है देने वाला, हाँ, या गुरु चेले का तो सिस्टम है ही नहीं, यहाँ तो बाप दादा है देने वाला, ये लेकर क्या करेंगे? अब बाबा भगवान शिव बाबा दाता वो लेकर क्या करेगा? किसी का भी अहंकार आता ना, मैंने इतना दिया मैंने इतना दिया, तो बाबा कहते किसके लिए कह रहे हो, आपने किसको दिया? वो तो देने वाला दाता है, वो लेता थोड़ी है, जो कुछ तुम देते हो अपने लिए ही करते हो। तो बाबा कहते हैं ये लेकर क्या करेंगे? बाप तो निराकार है ना, लेंगे साकार, चलो कहेंगे साकार लेंगे। ये भी समझने की बात है, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए हम शिव बाबा को देते हैं, बहुत बड़ी बात, हम शिव बाबा को हमने इतना दिया इतना दिया। बाबा कहते कभी नहीं कहना चाहिए, नहीं हमने शिव बाबा से पदम लिया, दिया नहीं लिया। बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं, हाँ, कई भाई बहने बहुत सुंदर बात बताते हैं कि मैं बाबा के भंडारी में डालता हूँ और सचमुच हमको कितना मिल जाता, तो मैंने ये नियम बनाया पहले जो भी मिले बाबा की भंडारी में डालना, और इतनी बरकत होती है बाबा की भंडारी में डालने से जो उसका 10 गुना मिलता है, ऐसे नहीं कि कोई हमने दिया। तो बाबा कहते बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं, शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको देंगे कैसे? मैंने दिया ये समझने से फिर देह अभिमान आ जाता है, हम शिव बाबा से ले रहे हैं, सदा ऐसे कहो, ये नहीं हम शिव बाबा को हमने दिया, हम शिव बाबा से ले रहे हैं। बाबा के पास इतने ढेर आते हैं, आकर रहते हैं तो प्रबंध चाहिए ना, इसलिए बाबा को मनी ऑर्डर कर देते थे, 1 रुपए का भी है बाबा एक ईंट लगा देना, एक ईंट लगा देना हमारा, तो इतना मनी ऑर्डर का जितना खर्चा होता होगा उतना मनी ऑर्डर में भी नहीं होगा, ऐसे भी करते। तो बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर रहते हैं तो प्रबंध चाहिए ना, मकान बनाना होता तो जो भी देते हो बाबा का मकान बनने के लिए यूज होता है। अभी भी देखो पांडव भवन का कितना कारोबार चल रहा है, कितना कुछ टूट फूट गया, यहाँ भी देखो तो बनाना है ना अभी, तो कितना खर्चा होगा, तो खर्चा तो होता ही है ना, तभी तो देखो कितना सुख मिला है इस हॉल में बैठकर। तो बाबा कहते हैं आकर रहते हैं तो प्रबंध चाहिए ना, मकान भी तो बनाने पड़ते हैं। गोया तुम देते हो किसके लिए? बाबा को देते हो, तुम देते हो अपने लिए, ताकि तुम यहाँ बाबा के घर में रह सको, तुम देते हो अपने लिए, उनको अपना थोड़ी कुछ करना है, शिव बाबा को तो अपना महल नहीं बनाना है ना। राजधानी भी तुमको देते हैं, इसीलिए करते भी तुम हो अपने लिए, तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूं और ये बाबा के दादा मेरे से ही मैं ऊंचा बनाता हूं तुमको, ऐसे बाप को तो भूल जाते हो। आधा कल्प पूज्य आधा कल्प पुजारी, पूज्य बनने से तुम सुख धाम के मालिक बनते हो, फिर पुजारी बनने से दुख धाम के मालिक बन जाते हो। ये भी किसको पता नहीं है कि बाप कब आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इन बातों को तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। बाबा इतना अच्छी रीति समझाते हैं फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। जैसे बाबा समझाते हैं ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। पुरुषार्थ कर ऐसा श्रेष्ठ बनना है। जैसे बाप बच्चों को समझाते हैं, बाप बच्चों को समझाते हैं बच्चों में बहुत अच्छे दैवी गुण होने चाहिए। कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। बाप कहते हैं ऐसे कोई काम अभी नहीं करो। हाँ, किसी को कुछ कहो और एकदम रूठ जाए, माना वो कितना सेंसिटिव होगा, एकदम जैसे छुई में हाथ लगाया भी नहीं कि वो पत्ते मुरझा जाते, अभी कुछ बोला भी नहीं है केवल तुमने आंख ही दिखाई तो वो एकदम मुरझा गया, तो सेंसिटिव बहुत नाजुक। बाबा कहते शक्ति बनना, नाजुक थोड़ी बनना है। बाप कहते ऐसे कोई काम अभी नहीं करो। चंडी देवी का भी मेला लगता है, जो बहुत नाजुक हो जाते हैं वो कौन सी देवी बन जाएंगे, चंडी देवी। चंडी देवी का भी मेला लगता है, चंडी का उनको कहते हैं जो बाप की मत पर नहीं चलती, जो दुख देती है, ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है। मनुष्य तो अज्ञानी है ना, अर्थ थोड़ी समझते हैं, कोई में ताकत नहीं, वो तो जैसे खोखले हैं। दुनिया में बाबा कहते सब ताकत ही निकल गई है, खोखले हो गए हैं, सहन शक्ति तो पाई की भी नहीं है, वो तो जैसे खोखले हैं। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है, परंतु यहाँ रहते भी, बाबा के पास रहते भी बहुतों की बुद्धि बाहर में भटकती रहती है। इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इसमें बिजी रहेगी, ज्ञान मनन चिंतन में बिजी रहेगी, बाहर की बातों में नहीं। गोले पर सीढ़ी पर किसको समझाओ तो बोलो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो ढेर मनुष्य है। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ, तो ऐसे ऐसे बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए, बोलने की प्रैक्टिस चित्रों के आगे बैठकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आप ही खोल सकते हैं, कई कहते हैं मेरा मुख नहीं खुलता, ज्ञान सुनाने में मुख नहीं खुलता, तो देखो बाबा ने उनको क्या कहा। तो ऐसे बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपना मुख आप ही खोल सकते हैं, अंदर में जो चलता है वो बाहर में भी निकलना चाहिए। कई कहते मेरा ज्ञान अंदर में चलता है, मुख से नहीं बोल सकते, तो बाबा कहते हैं जो अंदर में चलता है ज्ञान वो बाहर में भी निकलना चाहिए। गूंगे तो नहीं हो ना, गूंगे जो होते अंदर में चलता है वो इशारे से बताएं विचारों को, वो आवाज नहीं निकलता तो गूंगे, अभी तुम गूंगे थोड़ी हो, तो तुमको जो ज्ञान बुद्धि में चलता है वो बोल भी सकते हो, तो गूंगे थोड़ी हो, तो गूंगे तो नहीं हो ना। फिर बाबा बताते घर में तो रड़िया मारने के लिए मुख तो है, घर में चिल्लाते हैं कोई जिसने कहा तो डांटना करना गुस्सा करना वो उसके लिए तो मुख है, और ज्ञान सुनाने के लिए मुख खुलता नहीं। ऐसे है क्या, ऐसे कोई है क्या जो ज्ञान सुनाने के लिए मुख खुलता नहीं है और बाकी रड़ियां मारने के लिए मुख बहुत खुला हुआ है। तो बाबा कहते हैं गूंगे तो नहीं हो ना, घर में तो रड़ियां मारने के लिए मुख खुलता है और ज्ञान सुनाने के लिए नहीं खुलता। तो बाबा कहते चित्र तो सबको मिल सकते हैं, हिम्मत रखनी चाहिए, अपने घर का कल्याण करें, अपना कमरा चित्रों से सजा सजा दो। एग्जीबिशन लगा दो अपने कमरे में, तो तुम बिजी रहेंगे, ये जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी, आर्ट गैलरी हो गई ना, तो चित्रों की आर्ट गैलरी हो जाएगी। दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए, जो आए उनको समझाओ। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे। बाबा इतनी उन्नति की युक्तियां बतलाते हैं, बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो भी विकर्म विनाश नहीं होंगे। आज बाबा कैसी बात सुनाते हैं ना, गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो भी विकर्म विनाश नहीं होंगे, ये सब है अंधश्रद्धा। हरिद्वार में तो सारे शहर का गंध आकर के गंगा में पड़ता है, सागर में कितना गंध पड़ता है, नदियों में भी कीचड़ा पड़ता रहता है, उससे फिर पावन कैसे बन सकते हैं? माया ने सबको बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। तो बाप बच्चों को ही कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा बुलाती है ना, बुलाया भक्ति मार्ग में, हे पतित पावन आओ। वो तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो है, पतित पावन तो एक ही बाप है। अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। जीवन मुक्ति दाता एक ही है, दूसरा न कोई। इतनी सहज बात का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, मुख से ज्ञान रत्न निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं, उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है, बिजी रहना है।